आप सबको नमस्ते। हमने अपने शास्त्रों को जाने सीरीज एक शुरू किया था। पिछले बार विजयादशमी के कारण हमने विजयादशमी पर डिस्कस किया, तो उसमें जितने भी हमारे हिंदू धर्म के वो पुराने से लेकर अभी तक जितने भी शास्त्र हैं जो हमारे धर्म को डिफाइन करते हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ को डिफाइन करते हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले बार हमने वेद के बारे में डिस्कस किया। आज वेद के शुरू में कुछ समय वेद से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने के बाद हम फिर अगले लिटरेचर पर चलेंगे। पिछली बार जो हमने वेद की चर्चाएं की, वेद क्या है, उसका क्या महत्व है, कितने वेद हैं, उसको वेद क्यों कहा जाता है, वेद का क्या इंपोर्टेंस है, इन सब पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया। आज दो इंफॉर्मेशन और आपको देना है। पहली चीज है कि वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं। वह समाना जाता है कि करीब करीब 1130 शाखाएं, उनमें से नष्ट होकर के थोड़ा बहुत जो बचे हैं। सवाल लोग पूछते हैं कि वेद चार है तो फिर ये शाखाएं क्या चीजें हैं? तैतरीय शाखा, शाकल शाखा ऋग्वेद का, वास्कल शाखा, ये सब क्या चीजें हैं? वेद श्रुति परंपरा में रही, श्रुति मतलब ओरल ट्रेडिशन में गुरु ने शिष्यों को बोल के सुनाया और शिष्य को वो मेमोराइज करके आगे उसको पास करना पड़ता था। तो जब अलग अलग गुरु बनने लगे तो हर गुरु की अपने कुछ कमी है, कुछ अच्छा ही है, प्रोनाउंसिएशन करने में, एक्सेंट में वो चेंजेस होता है। तो सपोज सहस्र शीर्षा पुरुषः एक मंत्र है, तो कुछ शाखाओं में इसको बोलते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः, और शाह को खा बोलते हैं। मतलब जिस गुरु ने शाह को बोलने की जगह खा बोला, उसकी जीवा की प्रॉब्लम है, एक्सेंट में, प्रोनाउंसिएशन में, कहीं से भी प्रॉब्लम है। धीरे 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 इस तरह उस गुरु के उच्चारण में अनेक जगह अनेक अक्षरों में चेंजेस आए, कहीं ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व है, लेटर्स चेंज हो गए, कुछ थोड़ा वो तो शब्दों में भी फर्क आ गया। तो वो धीरे धीरे सैकड़ों हजारों सालों के बाद उस गुरु परंपरा से सीखने वाले जो आगे बढ़े उनके वेदों में कुछ डिफरेंस दिखने लगा। अब कोई दूसरे गुरु, मान लीजिए तमिलनाडु का है, उसके कुछ और तरह की चीजें रही, कुछ अगर बिहार का है, कोई पंजाब का है, कोई बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, डेफिनेटली उच्चारणों में, एक्सेंट में, बहुत सारे इंटोनेशन में, शब्द को ठीक ठीक बोलने में, गुरु में अगर कोई अंग विकलता है, कोई डेफिशिएंसी है बॉडी पार्ट में, उसके कारण कुछ डिफरेंसेस आए। क्योंकि ये एक हजार सालों का ट्रेडिशन है, तो वो डिफरेंसेस धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो गए और वो पर्टिकुलर एक शाखा कहलाने लगे। उसको हमारे वैदिक शास्त्रों में, अनुक्रमणी ग्रंथों में कहा जाता है गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारण परंपराया शाखा भेद। तो गुरु के मुंह से जो उच्चारण किया गया, उस उच्चारण को सुनकर के दूसरों ने जो उच्चारण किया, उस परंपरा से जो एक एस्टैब्लिश्ड हुआ ओरल बुक वेद का, वो एक शाखा कहलाया। आगे जाकर के वेदों के अलग अलग शाखाएं बनने लगी। ऐसा माना जाता है कि पतंजलि महाभाष्य में, अपने व्याकरण के महाभाष्य में देखते हैं, ऋग्वेद के 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद के 101, सामवेद के हजार थाउजेंड, अथर्वेद के नौ। सामवेद के हजार क्यों हो गए? क्योंकि साम एक गान है, सामवेद गान का वेद है, तो अलग अलग तरह की जो गान पद्धतियां बनी उसके कारण वेदों में, जैसे आजकल वो घराने होते हैं ना, एक ही राग को अलग अलग घराने वाले अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह साम गानों में डिफरेंसेस ज्यादा दिखने लगे। अल्दो यद्यपि आज वो सारी शाखाएं अवेलेबल नहीं है, हर वेद के दो चार पांच मुश्किल से शाखाएं मिलते हैं, पर इसका अर्थ नहीं कि शाखाएं अलग अलग होने से वेद अलग हो गया। वो शाखाएं सिर्फ गुरु परंपरा से जो मौखिक उच्चारण है उसके कारण शाखाएं, वेद तो वेद है, एक ही वेद है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आगे चलते हैं। वेद की जो ट्रांसमिशन हुआ एक से दूसरे को, जो जो वेद बताया गया, मंत्रों का उच्चारण हुआ, उसमें परफेक्शन लाने के लिए कुछ आगे लिटरेचर बने जिसकी चर्चा आज 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 मौका मिलेगा तो आज भी करेंगे। तो प्रॉपर जो आर्टिकुलेशन हो और जो प्रोनाउंसिएशन हो जो वैदिक शब्दों का, वो जो हमारे शिक्षा ग्रंथों में, प्रतिशिक्ष ग्रंथों में, शिक्षा प्रतिशिक्ष मतलब एक तरह के उच्चारण कैसे करना, उस पर जो लिटरेचर है उसके बेस पर फॉलो किया जाता था। लेटर पीरियड में आगे जाकर के उन वेदों की रक्षा के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा ह्यूमन नेचर है, मानवीय प्रवृत्ति है कि वो किसी भी शास्त्र में, खास करके अगर ओरल हो वो इजी होता है, उसमें कुछ चेंजेस करना, कुछ ऐड करना, कुछ निकाल देना, अक्षरों में हेराफेरी करना, वाक्यों में हेराफेरी करना, अपने विचार के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, या कभी कभी जानबूझ करके मिस्चीवियसली करना, ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की फितरत है। उससे बचने के लिए कि वेदों में किसी भी तरह का भी कोई अपमिश्रण ना हो, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने एक सुंदर व्यवस्था बनाई कि उसमें कोई अल्टरेशन या इंटरपोलेशन ऑमिशन ना हो। उसे हम कहते हैं विकृतियां, पाठ विकृति। वो एक तरह के वेदों को सुरक्षित रखने के लिए फोर्ट बनाया गया, एक वेदों का एक फोर्टिफिकेशन, कि उसको यथासंभव उसको एज इट इज प्रिजर्व किया जाए। एज इट इज मतलब इवन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका इंटोनेशन में भी कोई चेंजेस ना आए, नोइंगली अननोइंगली डेफिनेटली उसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वर्ड्स में हेरा फेरी करेंगे, कभी कभी समझ में नहीं आता है, कभी कभी सुना ठीक से सुन नहीं पाते हैं, कभी गुरु जो बोलता है उसकी बॉडी की डेफिशिएंसी, जो अभी हमने शाखाओं के बारे में सुना, तो उसके कारण एक जो सेफ गार्ड बनाया, उस सेफ गार्ड के बारे में मैं बताने से पहले प्रोफेसर ए ए मैकडोनल्ड, जो कि खुद वेदों के ट्रांसलेटर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं संस्कृत साहित्य के, उनका हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पेज 50 में वो लिखते हैं, द डिवाइसेस अडॉप्टेड बाय दोज ऋषिज टू सेफगार्ड द लेटर ऑफ व्हाट दे रिगार्डेड एज द वर्ड ऑफ गॉड अगेंस्ट अल्टरेशन इंटरपोलेशन और अमिशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिक्यूशंस सून बिगैन टू टेकन टू गार्ड द कैनोनिकल टेक्स्ट thus fixed against the possibility of any change or loss. The result has been its preservation with a faithfulness unique in literary history. यकीन मानिए पूरे विश्व की, वर्ल्ड की जो लिटरेरी हिस्ट्री है, साहित्य का जो इतिहास है, इसमें आज तक इवन हजारों सालों के बाद में ये अपने आप में फर्स्ट और लास्ट एक यूनिक तरीका है कि अपने लिटरेचर को कैसे सेव किया जाए किसी भी तरह की अल्टरेशन से, किसी भी तरह के माल प्रैक्टिस से सेव किया जाए, उसको हमारे यहां कहते हैं विकृति पाठ। वो क्या चीज है? जनरली जो वेदों में 11 पाठ होते हैं, मतलब किसी भी मंत्र को आप 11 तरीके से पाठ करेंगे, उसमें मूल पाठ द ओरिजिनल रिसाइटेशन वो 3 है, बाकी जो उसमें थोड़ा टेक्निकली उसको चेंज करके पढ़ा जाता है वो 8 तरह के होते हैं। वो एक तरह का आगे जाकर के प्रूफ रीड है। मान लीजिए कोई गलत जानबूझ के व अनजाने में कुछ गलत बोलता है, गलत ऐड करता है, ओमिट करता है, इसको पकड़ने के लिए ये अलग अलग पार्ट हेल्प करते हैं। जैसे आप प्रूफ रीडिंग करते हो, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, कुछ होता है, तो आप इसको देख करके करेक्ट करते हो। इसी तरह प्राचीन काल से लेकर आज तक जो वैदिक विद्वान है, जब भी उनको लगता है ये वेद मंत्र में ये अक्षर गलत आया, ये मंत्र अलग है, गलत है, या शब्द गलत है, तो वो आज भी वेद पाठियों को जो श्रुति परंपरा से विकृति पाठ करते हैं, उनसे अलग अलग तरह से पाठ करा के मेक श्योर करते हैं कि उसका एक्चुअल वर्ड लेटर मंत्र सेंटेंस क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें जटा पाठ का है, जिसका जनरली मीनिंग होता है मेश रिसाइटेशन। जब आप अक्षरों के बीच में, शब्दों के बीच में इतने ज्यादा मेशअप करते हैं, मेशअप मतलब केओस करके नहीं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको मेशअप करते हैं, फर्स्ट लेटर को सेकंड लेटर के, फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, फिर थर्ड को फर्स्ट और सेकंड के साथ, फर्स्ट और सेकंड को थर्ड के साथ, इस तरह जो उसको चेंज करके रिसाइटेशन किया जाता है एक ही मंत्र को, और उसके ओरिजिनल ऑर्डर में रिपीट किया जाता है, रिवर्स ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर, बहुत सारे तरीके से, उसको हम विकृति पाठ कहते हैं। मूल पाठ 3 है, संहिता पाठ अभी आपको बताएंगे, पद पाठ और क्रम पाठ, और विकृति पाठ 8 है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, गण। तो हम एक छोटा सा मंत्र लेंगे एग्जाम्पल के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कैसे इनको वेद को सुरक्षा करने के लिए हर मंत्र के लिए 11 तरह के सिस्टम बनाए गए। हमने एक मंत्र का एक छोटा सा टुकड़ा एग्जाम्पल के लिए लिया, ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। ध्यान दीजिए, इस मंत्र का एक टुकड़ा है, इसमें 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 शब्द है। इस 5 शब्दों को एज इट इज पढ़ना, जैसा मंत्र है उसको आप जब एज इट इज वैसा ही पढ़ते हैं, उसको कहते हैं संहिता पाठ। फिर जब आप इस वर्ड्स को संधि के हिसाब से उसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पद पाठ, दैट इज ऑल्सो ओरिजिनल पाठ, मूल पाठ। जैसे ओषधयः सम वदन्ते सोमेन सह राज्ञा, तो आपने अलग अलग करके पढ़ा। थर्ड पार्ट होता है कि आप उसमें सिर्फ एक वर्ड को रिवर्स करते हैं ओरिजिनल पार्ट से, जैसे ओषधयः फर्स्ट वर्ड, सम सेकंड वर्ड, आपने बोला ओषधयः सम, फिर उसको लेटर वर्ड के साथ जोड़ करके बोलते हैं सम वदन्ते, वदन्ते को उसके लेटर वर्ड के साथ बोलते हैं वदन्ते सोमेन, सोमेन सह, सह राज्ञा, राज्ञे तिराज्ञा, इसको कहते हैं क्रम पाठ। इसमें आप किसी तरह का रिवर्स रीडिंग नहीं करते। तो ये जो 3 तरह के पाठ हैं, ये मूल पाठ या ओरिजिनल पाठ माना जाता है किसी भी मंत्र का। जो विकृति पाठ है वो 8 है। हमने यहां आपको सिलेक्ट करके 2 पाठ कोट किया, एक चौथे नंबर में जटा पाठ, एक 11वां नंबर का घन पाठ। तो वो आपको समझने के लिए देखिए, यही सिंपल मंत्र है, ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। इसको जटापाठ में जब बोलता है ఓషధయః సం సమోషధయః ఓషధయః సం సంవదంతి వదంతి సం సంవదంతి వదంతి సోమేన సోమేన వదంతి వదంతి సోమేన సోమేన సహ సహ సోమేన సోమేన సహ సహ రాజ్ఞ రాజ్ఞా సహ సహ రాజ్ఞ రాజ్ఞేతి రాజ్ఞ. कितने तरह के रिवर्स वर्डवे पर, ये बहुत सिंपल है. जो जो घनपाठ है वो उसे और मुश्किल है. सबसे मुश्किल होता है ये घनपाठ जिसमें बहुत ज्यादा रिवर्स होते हैं, रिवर्स रिसाइटेशन. ओ शत, आपको उसमें हो सकता है कुछ समझ में ना आए, कुछ पल्ले ना पड़े, तब भी आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, पता रहेगा कि कैसे आपके पूर्वजों ने इवन एक लिटरेचर को भी सेव करने के लिए विदाउट यूजिंग एनी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट कैसे यूनिक इन्होंने एक एक यूनिक स्टाइल को इनोवेट किया अपने शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए और हजार हजार साल से पहले. तो घनपाठ है ओषधयः सम समोषधयः ओषधयः सम वदन्ते वदन्ते समोषधयः ओषधयः सम वदन्ते संवदन्ते वदन्ते सं संवदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते सं संवदन्ते सोमेन वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह सह सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह सोमेन सह सह सोमेन सोमेन सह राज्ञ राज्ञ सह सोमेन सोमेन सह राज्ञ सह राज्ञ राज्ञा सह सह राज्ञेति राज्ञा राज्ञा सहेति सह सह राज्ञेति राज्ञा. ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में रखा. और ये जो वेद पाठी होते हैं, एक मंत्र को आप गायत्री मंत्र है उसको अगर आप घनपाठ के रूप में पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 2-3 मिनट लग जाएगा. जो जनरली आप पढ़ते हैं तो आपको 10-15 सेकेंड लगता है. ये सब इसीलिए नहीं बनाया गया था कि इसको कोई हवन में पढ़े, कोई मंदिर में पढ़े, नहीं. ये एक तरह की टेक्निक जो वेदों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी. और ये गुरु परंपरा से या परिवार की जो कुटुंब परंपरा से ये चलती आ रही है. यद्यपि आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है. भारत के दक्षिण भाग में, सदर्न इंडिया में कुछ फैमिलीज हैं गुरु शिष्य परंपरा से, जो पूरे के पूरे वेद के सारों सारे 11 तरह के पाठ विकृतियों को जानते हैं, कुछ चारों वेदों का जानते हैं, जिनका संख्या बहुत कम है. नॉर्थ में थोड़ा बहुत काशी वगैरह में है. कहीं कहीं आपको किसी बड़ी मीटिंग में, सभा में, धार्मिक सभा में कोई पंडित जी वेद पाठ करते हुए मिल जाएंगे. तो वो अगर कहीं इस तरह के पाठ विकृतियां पढ़ते हैं, वो एक चैप्टर, एक सूक्त या एक 8-10 मंत्रों का एक पाठ करते हैं, पर इनकी संख्या बहुत कम हो गई है. दूसरी चीज आप एक नोट करते होंगे, कभी वेद पाठ करते हैं तो हाथ हिलाते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ये जो हैंड गेस्चर करते हैं और सर का भी गेस्चर करते हैं वो क्या है. वो मंत्र जो होता है, जो आगे जाकर संस्कृत लिटरेचर में उस वो लोप हो गया, तो वैदिक मंत्रों में जो लैंग्वेज है उसमें स्वरों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. स्वर मतलब यहाँ जो इंटोनेशन है, कहाँ उसको ऊंचा लेना है, कहाँ उसको नीचा, मतलब आपके वॉइस को ऊंचा करना है, नीचा करना है या मीडियम रखना है, इससे मीनिंग भी बदल जाते थे. इसको कहते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित. तो इससे अगर आपने अपने टोन को ठीक नहीं रखा, इंटोनेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके शब्द का अर्थ भी बदल जाते थे. और क्योंकि हर शब्द के ऊपर अगर आप कोई वेद पुस्तक उठाकर देखेंगे कुछ अक्षर के ऊपर एक डंडा सा है, सीधा डंडा, उसको उदात्त कहा जाता है. किसी अक्षर के नीचे एक सोई हुई डंडी है तो इसको हम अनुदात्त कहते हैं, जहां डंडा नहीं उसको हम स्वरित कहते हैं. तो वेद पाठियों को कभी कभी गलती हो सकती है, तो बार बार अभ्यास करने के बावजूद भी, तो जब हैंड गेस्चर साथ में चलता है, उदात्त हो ऊपर जाएगा, अनुदात्त हो नीचे आएगा, स्वरित हो बीच में रहेगा, तो कभी कभी ये दोनों बैलेंस बनाते हैं. अगर आपने गलत उदात्त के जगह अनुदात ऊंचा के जगह नीचा किया, टोन नीचे के जगह ऊंचा किया, तो हाथ का गेस्चर भी आपको पता है, बॉडी जब प्रैक्टिस हम कोई चीज करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स रोबोट की तरह काम करते हैं, मतलब वो फिर उसी हिसाब से अपने आप चलने लगते हैं। मच्छर काटता है तो आपका हाथ अपने आप जाता है, कभी कभी आपको पता नहीं चलता क्योंकि ये हैबिट होता है। इसी तरह हाथ की जो चलने की हैबिट होने से, तो अगर आपका हाथ ऊपर गया और आपने वाणी में उसको अनुदात रखा तो आपको खुद पता लग जाता है कि आपने रंग किया, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इतनी बारीकी से वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे ऋषियों ने आचार्यों ने बड़ी व्यवस्था की थी। तो ये वेद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो लास्ट टाइम टाइम होने के कारण नहीं हो पाया वो बताया। आज हम चलेंगे और एक लिटरेचर पर। वेदों के बाद जो दूसरे तरह के लिटरेचर आए उनको हम कहते हैं वैदिक साहित्य, मतलब वो वैसा लिटरेचर जो वेद से रिलेटेड है। वेद को समझने के लिए जो लिटरेचर बनाए गए और वेद में बताए गए बातों को एक्सपैंड करने वाले जो लिटरेचर बताए गए उनको हम कहते हैं वैदिक साहित्य। उसमें बेसिकली तीन लिटरेचर आते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण सुन के मत समझ बैठे है कि कोई ब्राह्मण जाति है, शर्मा जी है, मिश्रा जी हैं, दुबे जी हैं, चौबे जी हैं, मैं उसकी बात नहीं करें। ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ये हिंदुओं का एक लिटरेचर है। क्रोनोलॉजिकली वेदों के बाद वो आए, हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकली वेद के बाद वो आए, और उनका इंपोर्टेंस भी वेद के बाद सेकेंड होता है ब्राह्मण ग्रंथों का। ये ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है, थोड़ा स्लाइड आपको दिखाते हैं। ओके, नॉर्मली जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वेदों के जो मंत्र हैं उनकी एक तरह के एक्सप्लेनेशन है, कमेंट्री है, और जो उस समय यज्ञ होते थे वैदिक यज्ञ, उन यज्ञों में जिन मंत्रों का यूज होता था उन मंत्रों का भी एक फिलोसॉफिकल या रिचुअलिस्टिक सोशियल मीनिंग निकाल के उस यज्ञ के साथ उसका क्या कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश करते थे, और यज्ञों में क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए विधि निषेधादियों की चर्चा होती थी। नंबर टू, ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक मिथ्स, कथाएं, स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी बहुत मिलते हैं। अपनी बात को एस्टैब्लिश करने के लिए कथाएं, आख्यायिकाओं का सहारा लेकर के दार्शनिक विचार भी उन मंत्रों को व्याख्या करते समय काफी फिलोसफी की बातें भी आती है। तो उन चीजों का हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लिटरेचर आज हिंदू लोगों के बीच में किसी को पता भी नहीं है, अब जबकि आज भी ज्ञानी विद्वान लोग इनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिटरेचर है। तो इनको ब्राह्मण क्यों कहा जाता है, आपको लगेगा ये तो कंफ्यूजन करता है भाई, कास्ट हो गया कोई शर्मा वर्मा, ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ब्राह्मण ही क्यों कहा और कुछ कह देता। शतपथ ब्राह्मण में आता है ब्रह्म वही मंत्र, वेद के मंत्रों को भी ब्रह्म कहा जाता है और वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है। वेदो वही ब्रह्म, ज्ञानम वही ब्रह्म, जो भी ज्ञान है वो ब्रह्म है, क्योंकि मंत्रों की व्याख्या, ये मंत्रों की एक्सप्लेन करने का काम करता है वेद मंत्रों की, इसीलिए इसको ब्राह्मण कहा गया। तो एक ये वेद मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ है, व्याख्यान, कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन। फिर यज्ञ को भी ब्रह्म कहते हैं, वेदों का जो कर्मकांड पक्ष है, जिन वेदों के द्वारा जो रिचुअल हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया गया, वो आज तो हम हजारों तरह के अपनी इमेजिनरी बहुत सारी चीजें अपने आप बना करके रिचुअल्स करते हैं, षोडशोपचार, चारोपचार, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होगा, पर ये सब वेदों में तो नहीं है। जो वेदों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया वो अलग अलग तरह के यज्ञ थे। तो ना यज्ञों की जो एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, उसका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, उसका सोशियल इंटरप्रिटेशन, यज्ञ और उसके हर विधि का और उस विधि के साथ जो मंत्र उपयोग होता था, उन सब की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। यज्ञों को भी ब्रह्म कहा जाता है, इस नाते उस ग्रंथ उन ग्रंथों को भी ब्राह्मण कहा जाता, उन ग्रंथों को भी ब्राह्मण कहा जाता है। तैतरीय संगीता के भाष्य में भट्ट भास्कर नामक आचार्य लिखते हैं, ब्राह्मणम नाम कर्मण स्तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ। ब्राह्मण का अर्थ इसलिए क्योंकि जो कर्म किया जाता है यज्ञ कर्म, और जो मंत्र है उन मंत्रों की और कर्मों की व्याख्या करने के कारण ब्रह्म से रिलेटेड होने से ब्राह्मण, ब्रह्म यहां यज्ञ, ब्रह्म यहां मंत्र। बहुत बार हमने चर्चा कर चुके हैं गीता क्लास में, क्वेश्चन आंसर क्लास में, सत्संग में अनेक बार। ब्रह्म शब्द का अर्थ सिर्फ परमात्मा नहीं है हमारे शास्त्रों में, ज्ञानम वही ब्रह्म, ज्ञान को भी ब्रह्म कहा। ब्रह्म बृंगतेर बृंगी बृंगी वर्धव सॉरी बृंगी वृद्धव, जो बढ़ता है उसे ब्रह्म कहा जाता है, ये बृंग धातु है। अन्नम वही ब्रह्म, जिसमें भी फैलने का पोटेंशियल है, अन्न ग्रेन को भी ब्रह्म कहा। पुत्रो वही ब्रह्म, आत्मा वही ब्रह्म, ज्ञानम वही ब्रह्म, वेदो वही ब्रह्म, यज्ञो वही ब्रह्म वही मंत्र, तो अनेक चीजों को ब्रह्म कहा गया। जब भी कहीं ब्रह्म शब्द आए डोंट जंप कंक्लूजन पर कि इसका मतलब परमात्मा हो गया, या दूसरा ब्रह्म ठीक से उच्चारण ना कर पाए तो ब्रह्म से लोग ब्रह्मा, वो पुराणों में जो एक चरित्र है जिसको सृष्टि के देवता माना जाता है उसमें जंप करते हैं। पर वेद और वैदिक लिटरेचर में ब्रह्म अनेक चीजों का नाम ब्रह्म हो सकता है, उसमें परमात्मा भी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या और यज्ञों की व्याख्या करने के नाम इसको ब्राह्मण कहा गया। हमने वेद की डिस्कशन में बात कही थी कि वेद स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है जो वेदों में है। अगर बाकी शास्त्रों में उसके अगेंस्ट कुछ बात बताई गई है तो वेद प्रामाणिक होगा, बाकी शास्त्र झूठे माने जाएंगे। वेद के अलावा बाकी जितने भी शास्त्र हैं सब परतः प्रमाण, परतः प्रमाण समझते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी वो डिपेंड करता है कि वेद उस वेद के वो अनुकूल है कि नहीं है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वो परतः प्रमाण में आता है। क्यों? जो परतः प्रमाण ग्रंथ, जो सेकेंडरी ऑथोरिटी बुक्स में ब्राह्मण ग्रंथ पहला स्थान पर आता है। जो फर्स्ट एलिमेंटरी ऑथोरिटी है वो तो केवल वेद है। क्या फर्क है? क्योंकि वेद हिंदू शास्त्रों के अनुसार अपौरुषेय है, ईश्वर प्रदत्त है, इसीलिए उसमें क्वेश्चन नहीं। पर ब्राह्मण ग्रंथों को ईश्वर ने नहीं प्रकट किया है, ये आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा वेद मंत्रों को समझने के लिए, समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन किया गया। आगे जाकर कुछ वेदों में वेद मंत्र और ब्राह्मण व्याख्या मिल गए तो बोले देखो ये भी वेद है, तो उसको हम कृष्ण यजुर्वेद जैसे कहते हैं, तैतरीय शाखा वगैरह में जाता है। तो ध्यान रखिए, वेद अपौरुषेय है पर ब्राह्मण ऋषि प्रणीत है, ऋषियों के द्वारा लिखा गया, बताया गया है, लिखा गया मतलब बोला गया है, मतलब इसमें ऋषियों का ऑथरशिप है। वेदों में ऋषियों की ऑथरशिप नहीं, वो सिर्फ इनोवेटर है। उसका विषय क्या है? वेदों ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है? अनेक विषय है, विधि, निषेध, हेतु, अर्थवाद, निरुक्ति, आख्यान, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली चीज है कि विधि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यज्ञों में, जो इंस्ट्रक्शंस है पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस उसको विधि कहते हैं, जो नहीं करना चाहिए जो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस है नेगेशन है उसको निषेध कहते हैं। विनियोग कौन सा मंत्र का कब यूज होना है, क्योंकि ध्यान रखिए ब्राह्मणों का ज्यादातर फोकस रहा यज्ञ से रिलेटेड मंत्रों से, तो यज्ञ आपके बच्चा पैदा होने पर भी हवन होता है, विवाह संस्कार पर भी होता है, मृत्यु पर भी होता है, और वैसे भी हजार तरह के यज्ञ हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। तो किसी भी यज्ञ की किसी भी प्रक्रिया में जो मंत्र बोला जाता है, इवन जो आप हवन करते हैं अग्निहोत्र आदि करते हैं, वो मंत्र और आप और हमारे द्वारा चुना हुआ नहीं है, वो उस मंत्र का जो अर्थ है उस अर्थ के अनुसार वो किस कॉन्टेक्स्ट में उस मंत्र को यूज करना चाहिए उसके लिए एक पूरा चार्टर बनाया गया है एक्सप्लेन करके, उसको कहते हैं विनियोग। अगला है हेतु। ब्राह्मण ग्रंथ का तीसरा चीज जो ब्राह्मण ग्रंथ समझाते हैं हेतु, कारण का निर्देशन। ये मंत्र का ये अर्थ है क्यों है, ये यज्ञ ऐसा किया जाता है क्यों करते हैं, इस यज्ञ में ये मंत्र पढ़ा जाता है क्यों किया जाता है, ये जो क्यों व्हाई इसका कारण बताने के भी ब्राह्मण ग्रंथों में कोशिश की गई। आज भी जो हम लोग या विद्वान लोग आपको बताते हैं ये यज्ञ में ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों नहीं होता है, वो उन ब्राह्मण ग्रंथों में ही इनको बताया गया, वो ब्राह्मण ग्रंथों का तीसरा सब्जेक्ट था। चौथा जो ब्राह्मण ग्रंथों का सब्जेक्ट है अर्थवाद। अर्थवाद मतलब जो जिस जो गलत है उस गलत को गलत कहने के लिए तो उसकी जो निंदा की जाती है एक स्टोरी के माध्यम से एक नरेशन के थ्रू उसको जो क्रिटिसाइज किया जाता है, और जो अच्छी चीजें हैं जो पॉजिटिव है उसकी प्रशंसा की जाती है, अलग अलग तरीके से प्रशंसा होती है ना, तो वो जो जो विधि है करने लायक है उसकी प्रशंसा, जो करने लायक नहीं है उसकी निंदा, इसको कहते हैं अर्थवाद। तो ब्राह्मण का ये चौथा विषय होता है। पांचवा विषय होता है वेद के मंत्रों का। बहुत सारे मंत्र के शब्द हैं जो आगे जाकर के बहुत मुश्किल हो गए समझने के लिए, क्योंकि वेद मंत्र इतने हजार हजार साल पुराना है तो शब्दों के अर्थ बदलते गए, उसकी जगह वो शब्द तो वही है अर्थ बदल गए, तो उस शब्द का एक्चुअल क्या मीनिंग होगा, वो ग्रामेटिकली तो मीनिंग कुछ और है पर पब्लिक में कुछ और यूज होता है, उसको ठीक करने के लिए निरुक्ति एटिमोलॉजी उसकी जो लिंग्विस्टिक वे में उसकी सोशियल कॉन्ट्रेक्ट आज की भाषा में कहें उसकी सोशियल कॉन्टेक्स्ट देख करके एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कशन फोनोलॉजी के दृष्टि से उस वर्ड का उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होगी उसको डिफाइन करने का काम भी ब्राह्मण करता है, वो है निरुक्ति। छठा जो ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मिलता है वो है आख्यान। आख्यान अलग अलग तरह से कथाएं स्टोरीज कहानियां घटनाओं इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन मिलता है, कुछ उनमें से मिथ है माइथोलॉजिकल है, कुछ इसमें से रियल स्टोरी है हिस्टोरिकल है, कुछ उसमें से मिक्सचर है, तो उसको हम कहते हैं आख्यान। और ये जो आख्यान है स्टोरीज हैं, आगे जाकर के जो पुराण आप देख सुनते हैं ना भागवत हरिवंश वगैरह वगैरह 18 महापुराण 18 उपपुराण, इन पुराणों का जो बीज इसी ब्राह्मण ग्रंथों से पड़ा पुराण स्टाइल में, जो कथाओं के द्वारा कहानियों के द्वारा माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज के द्वारा मिक्सचर मिक्स स्टोरीज के द्वारा बात को समझाने की जो कोशिश है वो ब्राह्मण ग्रंथों में शुरू होता है। बहुत सारे शास्त्रों में आता है वेद को समझने के लिए इतिहास और पुराण लिखे गए, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, वेद को ठीक ठीक समझने के लिए इतिहास और पुराण हेल्प करते हैं। वो इतिहास पुराण ये जो 18 पुराण जो बेसिकली हजार बारह सौ पंद्रह सौ साल पहले लिखे गए उन पुराणों की बात नहीं है, जो भागवत गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि नहीं, उन ब्राह्मण ग्रंथों को ही हमारे शास्त्रों में पुराण कहा गया। उस समय इन्हीं को पुराण कहा जाता था, इन्हीं को इतिहास कहा जाता था, क्योंकि वेद के बाद जो नेक्स्ट लिटरेचर आया, वेद तो ईश्वरीय वाणी है, उसमें ना कोई हिस्ट्री है ना कोई स्टोरी है, कोई अगर थोड़ी बहुत डायलॉग्स मिलता है वो एक एग्जाम्पलरी के रूप में, एनालॉजी के रूप में। ब्राह्मण ग्रंथों में रियल हमें कुछ हिस्ट्री मिलते हैं, कुछ नैरेशंस मिलते हैं, कुछ लेजेंड्स मिलते हैं, कुछ स्टोरीज मिलते हैं। तो एक तरह के जो हिंदू धर्म का जो पहले पौराणिक स्टाइल के ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ न केवल पुराणों के बीज रूप हैं, ध्यान रखिए, आगे जाकर जो इतना बड़ा पुराण लिटरेचर बना उसका जो रिसोर्स है, जो मूल बीज है, ब्राह्मण है। केवल इतना नहीं, आगे जाकर बहुत सारे और लिटरेचर डेवलप हुए उनका भी मूल ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे मीमांसा दर्शन, जो छह दर्शन है उनमें एक मीमांसा दर्शन है, वो भी ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक तरह के एक्सपेंशन बना, फिलोसॉफिकल एक्सपेंशन। फिर हमारे यहाँ निरुक्त एक शास्त्र बना जो भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक लिटरेचर है, वो भी ब्राह्मण ग्रंथों का एक लिंग्विस्टिक लिटरेचर के रूप में एक्सपेंशन बना। तो ब्राह्मण ग्रंथ आगे जाकर के लेटर पीरियड में जो बहुत टेक्निकल ग्रंथ बने उनके बहुत सारे डायमेंशन का वो रिसोर्स रहा। उनकी संख्याएं कितनी है, नंबर क्या है, थोड़ी बहुत बात करके नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, हर वेद संहिता का ऋग यजु साम अथर्व और आगे जाकर जो उनके गुरु परंपरा से जो शाखाएं बनी उसके हिसाब से हर वेद संहिता का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी बने। और आगे हम चर्चा करेंगे जो आरण्यक और उपनिषद लिटरेचर वो भी इन ब्राह्मण ग्रंथों से रिलेटेड है। मोस्ट ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, वो नष्ट हो चुके हैं, वो आजकल मिलते नहीं है। फिलहाल जो मॉडर्न टाइम में हमें मिलते हैं वो सारे मिला के 19 करीब ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलते हैं। वो कौन से हैं? ऋग्वेद से रिलेटेड दो ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलते हैं, ऐतरेय और शंखायन ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ तैतिरीय और मैत्रायण ब्राह्मण। सामवेद से रिलेटेड बहुत सारे ब्राह्मण मिलते हैं, तांड्य, षडविंश, दैवत, छांदोग्य, अद्भुत, आर्षेय, सामविधान, छांदोग्य, संहितोपनिषद, वंश, ये छोटे छोटे ब्राह्मण होते हैं, बहुत छोटे छोटे। और अथर्ववेद से रिलेटेड गोपथ ब्राह्मण, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ आज भी बहुत इंपोर्टेंस उनका है, वो अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का, और ऋग्वेद के ऐतरीय ब्राह्मण। आज भी बहुत ज्यादा इनका इंपोर्टेंस मिलता है, लोग इसको पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, यूज करते हैं, करते हैं। पर इसके साथ एक दुख की बात है, ब्राह्मण टेक्स्ट जो है, लिटरेचर है, वो हमारे हिंदू धर्म का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने में, उसको आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल है, खास करके जो यज्ञ प्रक्रिया है। पर जैसे जैसे भारत में इलिटरेसी बढ़ी और उसके जगह जो शास्त्रीय धर्म था उसके जगह भक्ति मूवमेंट ने लेने लगा, भक्ति आंदोलन बढ़ने लगा, मतलब भक्ति मतलब इजीएस्ट वे, भाई कोई कुछ नहीं, भजो कीर्तन खाओ पियो, माने भजन करो कीर्तन करो, हो गया। तो ये भक्ति आंदोलन ने सारे शास्त्रों को तो समाज से हटाया ही हटाया, क्योंकि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हरि नाम भजो, शिव नाम भजो, जो भी जो भजो पूजो, हो गया, कोई शास्त्र पढ़ने की या मन को शुद्धि चरित्र शुद्धि पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, उसे शास्त्र अध्ययन को बहुत धक्का लगा। पर उसके कारण जो यज्ञ व्यवस्था है वो पूरा एक तरह के नष्ट हो गया और ब्राह्मण ग्रंथ पूरी तरह बैकग्राउंड में चले गए और वो एक तरह के पास्ट की मेमोरी बन के रह गए ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगला जो लिटरेचर है ब्राह्मण के बाद आरण्यक, पता नहीं इनमें से कितने लिटरेचरों का नाम आपने सुना होगा। आरण्यक लिटरेचर ब्राह्मण ग्रंथों का ही जो बुक्स होते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। वो यज्ञों का जो अलग अलग सेरेमनीज है या मंत्रों का फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन करता है। अच्छा, आरण्य ग्रंथ अलग से नहीं मिलते, ब्राह्मण ग्रंथों का कुछ चैप्टर, वो चैप्टर जिन चैप्टरों में यज्ञों का या वेद मंत्रों का फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है या कोई डायलॉग या डिस्कशन है, वही पार्ट को आरण्यक कहा गया। कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, मतलब गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ मतलब जंगल में जाते थे आध्यात्मिक साधना के लिए, वो ब्राह्मण ग्रंथ तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के लिए ठीक है उस समय, तो उनको यही सब यज्ञ वेदादि का थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल चाहिए जिससे वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए उनको हेल्प करे। तो आरण्य ग्रंथ वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो लिटरेचर आए उसका एक तरह के पहला ग्रंथ बना। वेद जंगल है, सोर्स वो महोदधि है, महासागर है, उसमें सब कुछ मिलता है। ब्राह्मण थोड़ा कैटेगराइज किया, ये सब्जेक्ट है। आरण्यक में फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन यज्ञ और सेरेमनीज की है। तो कुछ आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के पाठ हैं, कुछ आरण्यक संगीता वेदों का भी थोड़ा पाठ मिलता है, और इवन जो आगे उपनिषद की चर्चा करेंगे कुछ उपनिषद आरण्यक का भी पाठ बना, ब्राह्मणों के पाठ बना, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आगे चलते हैं उपनिषद। ये तो बड़ा पॉपुलर है, सबको, सब तो नहीं, आम लोगों को तो पता नहीं, कम पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जरूर पता है। पर बड़े मजेदार बात देखिए, मोस्ट ऑफ हिंदूज को इवन उपनिषद के बारे में भी नहीं पता। अगर आप सर्वे करें पढ़े लिखे अनपढ़ों में भी, तो मोर देन 70-80% लोगों को पता ही नहीं कि ब्राह्मण तो छोड़िए, वेद का नाम भी बहुत सुन ले बड़ी बात है, उपनिषद तो 80-90% को भी पता नहीं होगा। जो आप लोगों में से जिनको पता है आप उस 10% में आते हैं, ब्राह्मण को तो 99% लोग भी नहीं जानते। ब्राह्मण आरण्य, ये उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वेदांत क्या चीज है, क्योंकि मार्केट में वेदांत बहुत चलता है, वेदांता वेदांत जी, मैंने वेदांता क्लास अटेंड किया, वो वेदांता में ये लिखा है, वेदांता मतलब मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग शहरों में रहने वाले लोगों में ये वेदांत और वेदांता एक फैशन है, तो वो हम समझेंगे। उपनिषद वैदिक लिटरेचर का, वेद, वेदों के इंटरप्रिटेशन के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्य ग्रंथ आए, जो लास्ट पार्ट आया वो है वेदा उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उपनिषद का अर्थ क्या है, उप मतलब पास, नि मतलब अच्छी तरह, सद मतलब बैठना। जो ज्ञान गुरु के पास बैठने से ही, बैठ के पढ़ने से ही मिलता है, मतलब उस समय जो ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातों से, कहीं किताब सुन लिया पढ़ लिया, किताबें पढ़ लेने से नहीं होता। यू नीड ए गाइड टू अंडरस्टैंड इट। वो जो गाइड के पास बैठ के चीजों को बारीकी से समझना, वो जो गाइड के पास बैठने से ही जो समझ आता है, बाकी जगह नहीं आता है, उस ज्ञान को उपनिषद कहा। गाइड मतलब यहां गुरु। वो कौन सा ज्ञान है? खुद को रियलाइज करने का, मैं कौन हूं, ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स को चलाने वाला क्या कोई है, अगर है तो वो क्या है, मेरे साथ उसकी क्या रिश्ता है, उसका यूनिवर्स से क्या रिश्ता है, यूनिवर्स से मेरा क्या रिश्ता है, इन सब चीजों को जानने के लिए जब आप किसी रियलाइज्ड पर्सन के पास, आत्मज्ञानी गुरु के पास बैठते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आंसर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, गुरु के पास बैठने से जो ज्ञान आगे जाकर इवॉल्व हुआ, उन्हीं ज्ञानों को हम उपनिषद ज्ञान कहते हैं। ये जो उपनिषद में जो सद धातु है उसके तीन इंटरेस्टिंग अर्थ है। तो उपनिषद में कैसा ज्ञान है आपको समझ में आएगा। कहते हैं सदलुर विशरणे, ऐसा ज्ञान जिस जो नाश कर दे। सदगतव, ऐसा ज्ञान जो आपको कुछ प्राप्त कराए। और अवसादन, जो अंत कराए। तो क्या मतलब हुआ? तो उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के पास बैठने से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिस ज्ञान को पाने के बाद आपके सारे इल्यूजन और इग्नोरेंस अंत हो जाएंगे, दूर हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और जिस ज्ञान को जानने के बाद आप खुद को, खुद के साथ परमात्मा को, यूनिवर्स के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। सिंपल भाषा में आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब आप अपने आप को जान जाएंगे और यूनिवर्स को, परमात्मा को, उनके साथ अपने संबंधों को, जिसको सिंगल वर्ड में हम कहते हैं आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, उसे क्या होगा, आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो उपनिषद आपके अज्ञान को, उपनिषद का ज्ञान आपके अज्ञान और इल्यूजन को दूर करता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है, दुखों का अंत कराता है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद जैसे अभी उसकी डिस्क्रिप्शन से आपको पता चला, बेसिकली उपनिषद का सब्जेक्ट होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान शब्द सुनने से पता नहीं थोड़ा हैवी वर्ड लगे, सिंपल बात है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, परमात्मा क्या है, परमात्मा के साथ हमारा क्या रिश्ता है, ये जो परमात्मा, इस संसार और मैं, इन तीनों के बीच की जो रिश्ता है, ये तीनों कौन कौन है, इनके बीच क्या रिश्ता है, ये ज्ञान जहां मिलता है वो उपनिषद ज्ञान कहलाता है। इसको वेदांत क्यों कहते हैं? इसके दो अर्थ है। अंत का मतलब एंड। ये जो उपनिषद लिटरेचर है, ये उपनिषद लिटरेचर वैदिक लिटरेचर का लास्ट लिटरेचर है। वेद, वेद को इंटरप्रेट करने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक, और उसका जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है वो उपनिषद। तो ये चारों मिला के वैदिक लिटरेचर है, जिसमें वेद चार, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद, ये लास्ट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। इसलिए वेदों का अंत, वेदों का अंत मतलब वैदिक लिटरेचर का अंत। पर उसका एक दूसरा साइड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उपनिषद को समझने के लिए। जीवन में जितना भी हमारा ज्ञान है ना, उसकी जो अल्टीमेट स्टेज है खुद को जानना। जब आप खुद को जान गए, फिर और कुछ जानने को बचेगा ही नहीं। आत्मज्ञान इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेजेस, सभी ज्ञानों का कल्मिनेशन है। अंत मतलब सार, वेदों का जो सार है, वेदों में क्या ज्ञान है, ये तो हम वेद की चर्चा में डिस्कशन किया था, वो स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, सोशियल हो, फिलोसॉफिकल हो, साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, हर तरह के ज्ञानों का बीज उसमें मिलता है। पर उन सभी ज्ञानों में जो कोर है, जो सबसे, जो सार रूप ज्ञान है, वो आत्मज्ञान। क्योंकि उपनिषद में वेदों का जो आत्मज्ञान पाठ है वो डिस्क्राइब है, इसलिए वेदांत अंत मतलब सार, समरी, जिस्ट, कंक्लूजन, और कंक्लूजन हमेशा आत्मा में होता है। तो वेदांत के दो अर्थ हैं, वैदिक लिटरेचर का ये लास्ट पार्ट है, वेदों का लास्ट पार्ट नहीं, वैदिक लिटरेचर, वेद और वैदिक लिटरेचर अलग अलग हैं। दो लिटरेचर्स बिलोंग टू वेदाज आर कॉल्ड वैदिक लिटरेचर, उनके लास्ट पार्ट है, और इसमें वेदों का जो ज्ञानों का जो कंक्लूजन है आत्मज्ञान वो उसमें मिलता है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। आगे जाकर वेदांत शब्द थोड़ा और एक्सपैंड हुआ, जो दर्शनों में जो एक शास्त्र है ब्रह्म सूत्र, जिसको पहले उत्तर मीमांसा कहा जाता, वो भी वेदांत कहलाने लगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगला सवाल है कि ये जो उपनिषद का को लिखा किसने, जो साक्षात्कृत धर्मा ऋषि, जिन ऋषियों ने तपस्या के द्वारा अपने आप को जाना, तपस्या के द्वारा एफर्ट्स करके, वो जो फर्स्ट हैंड नॉलेज जिनको हुआ, उन लोगों ने अपने शिष्यों को या दूसरों को ये ज्ञान बांटा। तो ये अनुभवी ऋषियों का ज्ञान है। अगर इसको आप मॉडर्न वे में समझना चाहते हैं, कोई साइंस की लेते हैं, कोई साइंस के 40 साल से 50 साल से रिसर्च करके या जितने भी साल रिसर्च करके कोई नई चीजें निकाली, इनोवेट किया, डिस्कवर किया, वो एक तरह का ऋषि है। उसी के गाइडेंस में वो जब दूसरों को ज्ञान देता है या जो लोग उसके गाइडेंस में नॉलेज लेते हैं, वो ज्ञान जो होता है वही उपनिषद हो जाता है। फिर यहां हम आत्मज्ञान की बात करते हैं, जिन लोगों ने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, संसार को जाना, रियलाइज किया, डीप में रियलाइज किया साधना के द्वारा, उन लोगों को जैसा जैसा समझ में आया, जो जो ज्ञान उनके जो उन्होंने रियलाइज किया साधना अवस्था में, उसी को उन्होंने बता दिया। इसीलिए उपनिषद की भाषा बहुत सरल है। क्यों? उनको उपनिषद को उन लोगों ने लिखा है, कहा है, जो इनोसेंट थे, जिनको कॉम्प्लिकेशन से कोई लेन देन नहीं है, जो पूरी जिंदगी साधना में ईश्वर को समझने में, खुद को समझने में लगा दिया, सांसारिक कॉम्प्लिकेशन से, जटिल सिस्टम से बहुत दूर है, इसलिए उनकी भाषाओं में बहुत सरलता है। उपनिषद की भाषा में बहुत इनोसेंसी है, बहुत इमोशन से, भावुकता भी है। कभी कभी ऋषि ने बीच बीच में उपनिषदों में छोटी छोटी कहानियां, आधी अधूरी पूरी कहानियां भी बताने की कोशिश की। कुछ उपनिषदों में डायलॉग्स भी मिलता है, गुरु शिष्य के बीच में क्वेश्चन आंसर के रूप में डायलॉग भी मिलता है। तो इस तरह के उपनिषद की जो लिटरेचर है, ऐसा उनका स्वरूप है। बहुत सरल भाषा भी सरल है, उसके सब्जेक्ट भी बहुत सरल है। वो अलग बात है कि उस सरलता में, क्योंकि वो उनका अनुभव है, तो उन्होंने एज इट इज उसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कोई उसके लिए लॉजिक नहीं दिया, कोई रैशनैलिटी नहीं दी, जैसा उनको फील हुआ, जैसा अनुभव हुआ, वो एज इट इज रख दिया। आगे जा करके यही उपनिषद हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं, जितने भी भारतीय दर्शन शास्त्र समझते हैं ना, द स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जो अलग अलग फिलोसफी बने, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, फिर बौद्ध फिलोसफी, जैन फिलोसफी, चार्वाक फिलोसफी, उनमें अलग अलग जो स्कूल्स आए, उन सब का मूल जो है, जड़ है, यही उपनिषद है। इन उपनिषदों के इनोवेशन के आधार पर ही फिलोसफिकल टेक्स्ट आए, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक चीज जो और कह के कंक्लूड करेंगे, तो तो ये जो उपनिषद है दे फॉर्म द कोर ऑफ इंडियन फिलोसफी. कितने उपनिषद हैं? टोटल 11 उपनिषद हैं. 10 प्लस 1 उसको कहते हैं. ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतिरिय छांदोग्य बृहदारण्यक. ये 10 सर्व प्रामाणिक हैं. श्वेता श्वेतर भी थोड़ा सेकंड कैटेगरी का, पर उसकी भी प्रामाणिकता मानी जाती है. ब्राह्मण और अरण्यकों के तरह उपनिषद भी किसी ना किसी वेद से रिलेटेड होते हैं. पर ध्यान दीजिएगा, आजकल बाजार में आपको कोई कहेगा 108 उपनिषद है, कोई कहेगा 200 उपनिषद है, कोई 202 उपनिषद है. ये फ्रॉड है. मैं आगे अगले दिन किसी दिन बात करूंगा कैसे हमारे यहां कोई भी शास्त्र जो पॉपुलर होता है उसके नाम पर बहुत सारे शास्त्र लिखे जाते हैं. जैसे मार्केट में कोई दुकान ठीक से चल जाता है, कोई सामान बिकने लग जाता है, तो बहुत सारे कंपनियां उसी सामान को बनाने लग जाते हैं. कोई दुकान चले जाता है तो बगल में उसी तरह के और दर्जनों दुकान खुल जाते हैं. इसी तरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उपनिषद बड़े श्रद्धेय थे तो बहुत सारे लोगों ने पापी पुण्यात्मा अच्छे बुरे नास्तिक आस्तिक विधर्मी धर्मियों ने और मिस्चीवियस लोगों ने अपने अपने उटपटांग ग्रंथ लिख के उसको भी उपनिषद नाम दिया. और हमारे भोले भाले इनोसेंट मूर्ख गधे हिंदू लोग उन सबको भी काउंट करने लगे कि ये भी उपनिषद है. 11 उपनिषद हैं बेसिकली जिनकी चर्चा हमने की, ना 15 ना 100 ना 150 ना 200. और मजेदार बात है उन 200-250 उपनिषद जो बाजार आज मिलता है उनमें ये भी उपनिषद है अल्लोपनिषद. किसी मौलवी ने कुरान को संस्कृत में अनुवाद करके बोला अल्लोपनिषद, वो भी भोले भाले मूर्ख हिंदू लोग उसको भी उपनिषद मानते हैं. इसी तरह किसी पादरी ने मतलब फादर ने संस्कृत पढ़ के उन्होंने बाइबल का एक अनुवाद के तरह रखा, उसका नाम दे दिया ईशोपनिषद, वो भी हमारे भोले भाले लोग पढ़ते हैं. मुझे तो अभी 15-20 साल पहले एक उपनिषद किसी ने गिफ्ट किया, उसका नाम था अनीशोपनिषद. आपने नाम सुना होगा ईशोपनिषद. अब उसका नाम ईशोपनिषद इसीलिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम, पहला वर्ड ईश है, परमात्मा सब जगह फैला हुआ है. वो व्यक्ति नास्तिक है, अतिष्ट है, ईश्वर को नहीं मानता. तो उन्होंने पंडित है तो उन्होंने 20-25 श्लोक लिख करके एक ग्रंथ लिखा नास्तिकता के, ईश्वर नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए. अब ज्यादा पुराना नहीं, अभी 15-20 साल पहले. और उसकी पहला श्लोक लिखा अनीशावास्यम इदम सर्वम, ये संसार ईश्वर रहित है, द होल वर्ल्ड इज विदाउट गॉड. उसका नाम रख दिया अनीशोपनिषद. भोले भाले मूर्ख हिंदू उसको भी उपनिषद में काउंट करेंगे. कल आप और हम कोई संस्कृत में कुछ लिख देंगे, उटपटांग कुछ भी लिख देंगे उपनिषद, हमारे भोले भाले लोग उसको भी उपनिषद मानेंगे. तो खाली उपनिषद ने हर शास्त्र के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने इलिटरेट है अपने चीजों के बारे में, कोई कुछ भी बोल देता है लिख देता है हम मान जाते हैं. तो ध्यान रखिए 11 उपनिषद. अगले बार जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इन वेदों को समझने के लिए एक 6 वेदांग जो 6 एंसिलरी टेक्स्ट है. फिर उपवेद मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल बुक्स हैं जिनको उपवेद कहा गया. फिर आगे हम अलग अलग शास्त्रों को लेते जाएंगे. तो आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं